ओम शांति। सायंकालीन सत्र में या यूं कहें इस भट्टी के अंतिम क्लास में, अंतिम किंतु अति महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और साथ साथ इस क्लास को कराने के लिए हमारे बीच में हमारे आदरणीय राजयोगी आत्म प्रकाश भाई जी पधारे हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। आप महाराष्ट्र की धरनी से नागपुर शहर से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। आज से करीब 45 वर्ष पूर्व जब आप अपनी एमएससी की पढ़ाई पढ़ रहे थे, वो पढ़ाई पढ़ते पढ़ते आपको ये ईश्वरीय ज्ञान मिला और अगले ही वर्ष आपने उस एमएससी की डिग्री प्राप्त की और जिस डिग्री को आपने बहुत सम्मानपूर्वक प्राप्त किया, गोल्ड मेडल आपने हासिल किया। और उसके 2-3 वर्ष बाद अर्थात आज से 40 वर्ष पूर्व आपने मधुबन हेडक्वार्टर में आकर अपना जीवन सदा सदा के लिए बाबा की सेवाओं में समर्पित किया। और हम सभी जानते हैं ब्राह्मणों का 3 चीजों पर हक होता है, है ना? किस किस पर हक होता है? एक बाबा, बाबा की बोली और बाबा से मिले टोली। हाँ, तो बाबा को टोली देकर तैयार करने वाले कौन है? हाँ, हमारे आत्म प्रकाश भाई जी टोली डिपार्टमेंट के मुख्य इंचार्ज, तीनों ही कॉम्प्लेक्स में जहाँ से टोली तैयार होती है और हम सबको मिलती है। ब्राह्मणों को टोली नहीं मिले जब तक अधूरा अधूरा लगता है ना? तो हमारे सफर को पूरा करने वाले या यहाँ से जब जाते भी है ना, यहाँ सिर्फ खाना नहीं होता है लेकिन खिलाने के लिए लेकर भी जाना होता है। अगर नहीं लेकर गए तो वो भी अधूरा रहेगा ना, तो वो सब प्रबंध आप करते हैं। आप देश विदेश में बाबा का संदेश देने के लिए भ्रमण करते हैं, विश्व के 5 ही खंडों में अपने यात्राएं की है और लगभग 60-65 देशों में आपने बाबा का संदेश देकर जन जन को अपने जैसा जीवन बनाने का प्रेरणा दी है। और इसके साथ साथ आपने रेडियो में, टेलीविजन में कई सारे इंटरव्यूज भी दिए हैं। और हेडक्वार्टर में जो एक विंग है, यूथ विंग, उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। ये तो कुछ जिम्मेदारियां हैं वो आपको बताई, लेकिन स्वभाव से आत्म प्रकाश भाई जैसा नाम है, आत्मा का जिनका प्रकाश दूर दूर तक निखरता है, जिनकी दृष्टि पाते ही वो आत्म ज्योति चमकती हुई दिखाई देती है और वो फिर उनके प्रवचनों से भी हम महसूस करते हैं। विशेषतः आप राज्यों की गहन स्टडी करके स्वयं को भी उससे संपन्न करते हैं, तो हमारे जैसे अनेक भाई बहने जो राज्यों को समझने थोड़ी डिफिकल्टी अनुभव करते हैं, उसको सहज करके बताने में आप बहुत ही माहिर हैं। और जैसे बाबा मुरली में उसको क्या कहेंगे हम, राइमिंग वर्ड्स को हिंदी में क्या कहेंगे, तालमेल वाले शब्द यूज करते हैं ना, आपकी भी बहुत यही विशेषता है कि क्लास में वो शब्द यूज करते हैं जो एक दूसरे से मेल खाते हैं, जो बहुत ही जल्दी बुद्धि में याद रह जाते हैं, तो आपकी क्लास भी पूरी याद रह जाती है और याद रहती है तो प्रैक्टिकल करना आसान हो जाता है। तो अनेक विशेषताओं से संपन्न हमारे भ्राता जी हमारे बीच में पधारे हैं, कर्म योगी फरिश्ता स्थिति पर इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए। तो हम भाई जी के अनुभव से सुनेंगे कि कैसे हम अपने जीवन को कर्मयोगी बनाएं और स्वयं को फरिश्ता बनाएं। आदरणीय भ्राता आत्म प्रकाश भाई जी।
ओम शांति। कर्म योगी फरिश्ता स्थिति कैसे अनुभव करें? हमारे ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। संपूर्ण फरिश्ता स्थिति की प्राप्ति करना, क्योंकि हम देखते हैं विदेशों में जहां तहां फरिश्तों की, एंजल्स की यादगार पाई जाती है, और भारत में भी परियों के रूप में यादगार पाई जाती है। क्यों? क्योंकि बाबा के ब्राह्मण बच्चों ने फरिश्ता स्थिति के द्वारा इस संसार की बहुत सेवा की है, इसलिए वो यादगार अभी तक भी पाई जाती है। क्योंकि लोग जब दुख दर्द में परिस्थितियों में होते हैं तो भगवान को तो वो जानते नहीं, लेकिन सोचते हैं कोई ऐसा फरिश्ता जाए और मुझे कुछ ऐसा मदद करे ताकि ये मेरी समस्या दूर हो जाए। तो बाबा हमें बेहद की सेवा करने का गोल्डन चांस दिलाना चाहते हैं, क्योंकि स्थूल देह से सेवा करने के लिए कुछ हदें होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन फरिश्ता स्थिति के द्वारा सारे विश्व में जहां चाहे हम छोड़कर जा सकते हैं, अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। जब से ब्रह्मा बाबा अव्यक्त फरिश्ता बन गए हैं तब से ये सेवा बहुत तेजी से आगे बढ़ती गई, क्योंकि बाबा ने अपने फरिश्ता स्थिति के द्वारा बहुत सेवा की है और अभी भी कर रहे हैं। तो ऐसी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना अगर हम चाहते हैं तो 5 बातों पर हमें विशेष अभ्यास करना जरूरी है। अगर उन 5 बातों पर अभ्यास करेंगे तो आपकी फरिश्ता स्थिति दिन प्रतिदिन निखरती जाएगी। तो पहली बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए फरिश्तों की जो दुनिया है, सूक्ष्म वतन जो है हमारे दिव्य नेत्र के सामने सदा इमर्ज रहे, आखिर भी वो फरिश्तों की दुनिया कैसी है। 1991 में मैंने गुलजार दादी जी का इंटरव्यू लिया था यहां मधुबन में, उनसे पूछा था कि आखिर वो फरिश्तों की दुनिया कैसी है, थोड़ा स्पष्ट कीजिए। क्योंकि अपने यज्ञ में सबसे पहले गुलजार दादी जी को सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार हुआ था, तो दादी जी ने बताया ये जो 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों से पार, चंद्र सूर्य तारागण से पार एक ऐसी दुनिया है जहां हमेशा सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश छाया रहता है। जैसे पूर्णिमा के दिन एक पूर्ण चंद्रमा आसमान में होता है और सारी धरती को सफेद श्वेत प्रकाश से जगमगाता है, ऐसे हजारों पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रकाश उस वतन में सदा रहता है। दूसरी बात, फरिश्तों की जो भाषा होती है वो नयनों के इशारे की और होठों के मोमेंट्स की होती है। जब भी संदेशी बहन बाबा के पास जाती है, बाबा से कैसी बात करती है, नयनों के इशारे से और होठों के मोमेंट्स के द्वारा बातचीत करती है। और वहां की कारोबार कैसी चलती है, संकल्प शक्ति के आधार से वहां की कारोबार चलती है। बाबा संदेशी बहन को जो भी दर्श दिखाना चाहते हैं, एक सेकंड में संकल्प शक्ति के द्वारा उस सीन को इमर्ज करते हैं और उसको प्रैक्टिकल अनुभव कराते हैं और उसके द्वारा बच्चों को कोई ना कोई प्रेरणा या संदेश भेजते हैं। समझा? तो ऐसी फरिश्तों की दुनिया हमें सदा देखना है। केवल देखना ही नहीं है, लेकिन वहां जाकर उस वतन के वाइब्रेशंस को बहुत अच्छी तरह से फील करना है, क्योंकि हमारा घर अभी कौन सा है? हाँ जी, हाँ, टाइटल ब्रह्मा कुमार, ये फलानी ब्रह्मा कुमार फलाना, तो बाप कौन हो गया? ब्रह्मा हो गया। तो जहां मेरा बाप रहता है वो मेरा घर कहलाता है। तो अभी वर्तमान समय ब्रह्मा बाप फरिश्तों की दुनिया में रहते हैं, तो हमारा घर भी सूक्ष्म वतन कहलाता है। वहां हमें जाना है, बहुत अच्छी तरह से वहां के वाइब्रेशंस को अनुभव करना है और उस घर में जाकर बाबा के साथ वह संबंधों की अनुभूति करते हुए उसको यूज करना है, उस पर अपना अधिकार जमाना है। समझा? तो बार बार हम जाएं और उसको बहुत अच्छी तरह से अनुभव करते रहें। दूसरी बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए इस देह रूपी मकान में आत्मा की लाइट सदा जलती रहे, कभी बुझे नहीं। माया उसको बुझाने का प्रयास करती है, हमें उसको जगाने का प्रयास करना है। क्योंकि आत्मा का जो लाइट है, आत्मा रूपी बल्ब जब जलता है तो उसकी लाइट हमें अनुभव होती है। तो ये हाउस जो है, लाइट हाउस हमें अनुभव होता है। स्थूल तत्वों का शरीर हमें नहीं अनुभव होता है, लेकिन मुझ आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस पहनी हुई है, ऐसा हमें अनुभव होता है। और जैसे ये लंबा समय अनुभव करते हैं तो ये हाउस माइट हाउस हमें अनुभव होता है। फरिश्ता स्थिति अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति अनुभव करते जाना। ये जो स्थूल देह है इसका भान एकदम मिटता जाए, भूलते जाए। फरिश्ता अर्थात दिव्य प्रकाश पुंज के कायाधारी ब्रह्मा बाबा मधुबन में जहां से भी गुजरते थे, ब्रह्मा बाबा को कोई देखता था, बाबा फरिश्ता ही नजर आते थे। क्यों? क्योंकि बाबा के मकान में हमेशा आत्मा का लाइट जलता रहता था। तो ये स्थूल देह नजर नहीं आता था, लाइट का शरीर बाबा का अनुभव होता था। एक बार प्रकाश मणि दादी जी अनुभव सुना रही थी, ब्रह्मा बाबा हाथ में हाथ लेकर मुझे मधुबन की सैर करा रहे थे, तो बाबा का हाथ जैसे स्थूल हाथ लग ही नहीं रहा था, एकदम रुई का हाथ है या लाइट का हाथ है, ऐसा अनुभव मुझे हो रहा था। तो फरिश्ता अर्थात दिव्य प्रकाश पुंज के कायाधारी अनुभव करते जाना, समझा। तीसरी बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए हमेशा हमें डबल लाइट अनुभव करना है, क्योंकि हल्की चीज ही ऊपर की ओर उड़ने लगती है। फरिश्ते के पैर कभी भी धरती से टच किए हुए नहीं दिखाते हैं, धरती से डिटैच होते हैं और उड़ता हुआ दिखाते हैं। फरिश्ता अर्थात फर्श से रिश्ता नहीं, अर्शवासी परमात्मा से रिश्ते और एकदम सूक्ष्म वतन वासी अनुभव करने वाला, उसको कहते हैं फरिश्ता। तो डबल लाइट की स्थिति अनुभव करना अर्थात एक लाइट तो आत्मा की लाइट है और दूसरी लाइट अर्थात हमेशा स्वयं को हल्के फुल्के अनुभव करते जाना। कितना भी बिजी है, चाहे कितनी भी बड़ी जिम्मेदारियां आप निभा रहे हैं लौकिक अलौकिक, लेकिन एकदम स्वयं को हल्का अनुभव करते जाना है, यह है फरिश्ते की निशानी। उसके लिए हमें क्या करना है, जो भी हमारी जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी का बोझ बाबा के कंधे पर हमें रख देना है और खुद को एकदम छोटा बच्चा या बच्ची अनुभव करना है। हल्की अर्थात है लकी, क्योंकि हल्की आत्मा उड़ती रहती है, बाबा की याद करती रहती है और अनेक पद्मों की कमाई हर पल हर घड़ी करती ही रहती है और भाग्य का सितारा चमकाती ही रहती है, समझा। प्रकाश मणि दादी जी के साथ मैं 25 साल मधुबन में रहा, मैं हमेशा दादी जी को देखता था और दादी के जीवन से बहुत बातें मैंने डायरेक्ट सीखी भी है। तो 95 में मैं दादी जी का इंटरव्यू ले रहा था तो दादी जी से एक प्रश्न पूछा कि दादी जी आप इतने बड़े यज्ञ की, विशाल यज्ञ की जिम्मेदारी निभा रही हैं, इतने 7000 सेवा केंद्र उस समय थे, इतनों की जिम्मेदारी आप निभा रही हैं, लेकिन हमेशा आप छोटे बच्चे की तरह लाइट अनुभव होती है, कभी भी आपके चेहरे पर मैंने टेंशन नहीं देखा, क्या इसका राज है मुझे बताइए। तो दादी जी ने बोला था कि देखो, पहली बात तो मैं स्वयं को निमित्त समझती हूं, मैं केवल कठपुतली हूं, बुद्धि रूपी रस्सी मैंने बाबा के हाथ में दी है, बाबा जैसे चाहे मेरे से सेवा कराते हैं, मैं केवल निमित्त हूं, करण करावनहार बाबा है, मैं केवल करणहार हूं। और दूसरी बात, हमेशा एक कंधे पर संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में ब्रह्मा बाबा अनुभव करती हूँ और दूसरे कंधे पर शिव बाबा अनुभव करती हूँ, दुनिया के सबसे पावरफुल फोर्सेस मेरे पास हमेशा हाजिर रहते हैं, कोई भी समस्या आती है उनकी मदद से बहुत सहज वो पार हो जाती है, इसलिए हमेशा मैं लाइट रहती हूँ। समझा, हम बोझिल कब होते हैं, बाबा ने एक बार कहा था, ये जो गॉडली यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी के जो टॉपर्स होंगे स्कॉलर्स होंगे, उनके जीवन में एक लेसन बहुत नेचुरल होगा, नथिंग न्यू का पार्ट बहुत उनका पक्का होगा। जो भी ये ड्रामा का सीन पास हो रहा है केवल और केवल रिपीटेशन है, नथिंग न्यू। हम यहां इस हॉल में बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, पहली बार नहीं बैठे हैं, अनगिनत बार बैठे थे इसलिए अभी बैठे हैं और अनगिनत बार बैठेंगे। तालियां तो बजाओ जरा एक बार। ये धारणा साधारण नहीं है, पूरे विश्व के ग्लोब पर सबसे पावरफुल ये स्थान है जहां भगवान इतने वर्षों से अपना कार्य कर रहे हैं और इतनी महान आत्माएं इतने वर्षों से तपस्या कर रही हैं, तो सबसे पावरफुल स्थान ये मधुवन कहलाता है। ऐसी धरणी पर आना और रहने का चांस दो चार दिन के लिए मिलना, ये बहुत पुण्य कर्म की को पूंजी है। पुण्य कर्मों के आधार से ही ऐसा गोल्डन चांस हमें मिलता है, समझा? तो इसलिए हमेशा स्वयं को हल्के अनुभव करना है, कोई नई बात है ही नहीं। अगर नहीं कोई नई बात होवे तो टेंशन होवे, लेकिन जो भी दर्श आ रहा है वो अनगिनत बार मेरे से पास हुआ है, मैंने उसको देखा है और उसको पार किया है, तो कोई बड़ी बात है नहीं। अच्छा दर्श है तो मेरे अच्छे कर्मों का फल है, और न अच्छा है तो मेरे बुरे कर्मों का फल है। ये तो बात स्पष्ट है, बाबा ने स्पष्ट की है। '87 में विदेशी भाइयों बहनों से बाबा ओम शांति भवन में मिल रहे थे, मुरली पूरी हो गई, 1200 भाई बहने थे। बाबा ने कहा किसी का प्रश्न है तो बोलो, तो एक भाई खड़ा होकर प्रश्न पूछने लगा, बाबा सारा दिन हम सेंटर पर बहुत बिजी रहते हैं, लौकिक जॉब करना पड़ता है और अलौकिक जॉब भी करना पड़ता है, थक जाते हैं, घोड़े की तरह भागना पड़ता है, और अमृत वेले जब योग में बैठते हैं तो माया को नमस्कार ही करते रहते हैं, माया को सैल्यूट मारते ही रहते हैं, सैल्यूट माया, झूले में झूलते रहते हैं, क्या करे बाबा। तो बाबा मुस्कुराए, अच्छा। बाबा ने कहा इस संसार में सबसे बिजीएस्ट व्यक्ति कौन है? ब्रह्मा बाबा, इनसे बढ़कर और कोई बिजी नहीं है। सबसे बिजी होते हुए, सबसे बिजी होते हुए सदा इजी रहकर नंबर वन कर्म योगी का सैंपल बाबा बनके दिखाया। वो कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है, वो आपका बाप है, किसी और का नहीं, आपका बाप है। अगर आपका बाप ऐसा स्थिति बना सकता है तो आप भी बना सकते हैं, केवल उनको फॉलो करने की आवश्यकता है। जब ये बात सुनी तो थोड़ा सा लंबा सांस लिया, हाँ ये संभव तो है। केवल बाबा के कदमों पर हमें कदम रखना है और हल्के अनुभव करना है। बाबा कहते मैं बैठा हूं ना, द्वापर युग से लेकर हम टनों अपने सिर पर बोझ ढोते थे, बाबा ऊपर से देखते थे मेरे बच्चे कितना टनों बोझ ढो रहे हैं, जब मैं धरती पर जाऊंगा ना मैं अपने बच्चों को सदा लाइट रखूंगा। अभी बाबा आए हुए हैं, बाबा कहते मुझे बोझ दो, हम देते हैं और फिर पुनः वापस लेते हैं, भाई बाबा का कसूर उसमें क्या है? तो इसलिए एक स्लोगन याद रखो, मैं कुली नहीं हूं, मैं रॉयल कुल वाला हूं। जो कुल्ले होते हैं ना, ते लाल कपड़े पहनते हैं ना रेलवे स्टेशन पर, इतना बोझा लेके सारा दिन ढोते रहते हैं, और किसी काम से घर में रहते हैं ना तो आज तो बदन दर्द हो रहा है, क्यों आज बोझा ढोने के लिए नहीं मिला, इसलिए। तो जो रॉयल कुल वाले होते हैं वो हमेशा हल्के होते हैं, समझा? तो मैं कुली नहीं हूं, मैं रॉयल कुल वाला हूं, सदा हल्के रहना ये मेरा धर्म है, ठीक है। चौथी बात, कर्म योगी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए हमेशा हमें निर्बंधन आत्मा अनुभव करना है। कोई भी रस रूपी रस्सी मुझ आत्मा को बंधी नहीं हो, कोई भी रस, जीव का रस, देखने का रस, स्पर्श रस, सुनने का रस, कोई भी रस रूपी रस्सी मुझ आत्मा को बंधी नहीं हो, मैं आजादी चाहता हूं। आजाद पंछी अर्थात देह रूपी पिंजड़े से भी न्यारा, भाई परमात्मा के प्यार में और आत्मा के प्यार में क्या अंतर है? पिंजड़े में जो फंसा हुआ पंछी वो है आत्मा का प्यार, और आसमान में उड़ता पंछी है परमात्मा का प्यार, है ना? ये दुनिया में दो ही चीजें हैं, ईश्वर और नश्वर, ये दो ही चीजें हैं। ईश्वर से प्यार करो या नश्वर से प्यार करो, हमें चॉइस है। तो लौकिक दुनिया में हमने देहधारियों से प्यार करते हुए कितना दुख सहन किया, फरिश्ता अर्थात सभी रिश्ते भगवान के साथ अनुभव करने वाला, उसको कहते हैं फरिश्ता। तो दो प्रकार की रस्सियां हमें बार बार बांधने का प्रयास करती हैं, व्यक्ति के तरफ आकर्षण होना या वस्तु के तरफ आकर्षण होना, ये दो रस्सियां बार बार हमें बांधने का प्रयास करती हैं। कोई भी रस्सी मुझे नहीं बांधे। व्यक्ति के तरफ अगर आकर्षण है तो हमें चेक करना है और वहां से बुद्धि को हटाना है, चेंज करना है, बाबा पर बिठाना है। कोई संबंध अगर आपको खींचता है, बच्चे का, पति का मां का, कोई भी संबंध हमें अपने तरफ खींचता है तो वो संबंध हमें बाबा के साथ अनुभव करना है, वहां से बुद्धि योग तोड़कर बाबा से जोड़ना है, बस। भगवान को पारसनाथ कहते हैं, क्यों कहते हैं भाई बाबा को पारसनाथ? हैं जी, पा रस नाथ, वो एक ही ऐसा नाथ है, सर्व संबंधों का रस, सर्व प्राप्तियों का रस उससे प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए उनको पारसनाथ कहते हैं। एक लोभी लालची कहता है पारस के साथ लोहे को लगाते तो सोना बनता है, वो पारस कहाँ है, ढूंढ रहा था पारस मिले ही नहीं, भाई पारस तो इनको मिला है, थोड़ा तालियां बजा जरा अच्छी तरह से। आयरन एजेड आत्मा जो पारस बाबा है उनके साथ रहती है तो गोल्डन एजेड बन जाती है, सोने तुल्य बन जाती है, असली पारस ये है बाबा, उनके साथ हमें रहना है, बुद्धि का साथ उनके साथ रहता है तो आत्मा एकदम गोल्डन एजेड बनती है, सोना प्योर कांचन बन जाती है, अलाय सारी खत्म हो जाती है, समझा? इसलिए सर्व संबंधों की अनुभूति मुझे बाबा से करना है। संगम अर्थात परमात्मा के संग में रहने का युग, उसको कहते हैं संगम युग, सारा कल्प तो हम आत्माओं के साथ रहें, लेकिन संगम युग जो है भगवान के साथ में अनुभव करने का युग है, उसका आनंद अपना है। समझा? अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति उसके द्वारा हमें होती है, ठीक है ना। व्यक्ति के साथ थोड़ा सा हमारा लगाव है तो सर्व संबंधों की अनुभूति बाबा के साथ करना है, और वस्तु के तरफ अगर बुद्धि जाती है तो क्या करें भाई। एक व्यक्ति कहता था मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी, अनाप शनाप प्रॉपर्टी, कितने मकाने, कितने दुकानें, कितना सोना, कितना बहुत कुछ है। ध्यान तो रखना पड़ता है, बाबा का है, ट्रस्टी हूं, सब कुछ समझता हूं, फिर भी बुद्धि तो मेरी जाती है, क्या करो। हां जी, कोई युक्ति है उसके लिए? वह व्यक्ति बीमार पड़ता है और डॉक्टर कहता है केवल तुम 3 मास के मेहमान हो, बस एक दिन भी जस्ती निकलने वाला नहीं है। जब बुद्धि में बैठता है मुझे यहां से जाना है, तो उसकी बुद्धि डिटैच होने लगती है। तो मुरली में हम सुनते हैं हमें घर वापस जाना है, सुनाते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन जब उसको हम रियलाइज करते हैं, इस रंगमंच पर हमने 5000 वर्ष का पाठ बहुत अच्छा बजाया है, अभी घर मुझे वापस जाना है, जब ये बात बुद्धि में बैठ जाती है ना, किसी के तरफ हमारी बुद्धि जाती नहीं, डिटैच होती है, मुझे यहां से जाना है। भाई ये लो धन 10 लाख, क्या करूं मैं तुम्हारे 10 लाख को, मुझे तो जाना है यहां से। समझा क्या? तो इसलिए वस्तु से भी हम डिटैच हो जाते हैं और आजाद पंछी अनुभव करते हैं। आ जा दी, इस पिंजरे के पंछे में जब चाहे आ जाएं और जब चाहे उड़ जाएं, जब चाहे बाबा के पास बैठ जाएं, उसको कहते हैं आजाद पंछी। गुलामी अभी मुझे नहीं चाहिए, माया की गुलामी मैंने बहुत सहन की, अभी संगम युग में मुझे आजादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है। तो इसलिए निर्बंधन हमें स्वयं को अनुभव करना है। उड़ता पंछी हमेशा उड़ता रहता है, ठीक है। 5वीं बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए हमें अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को सामने इमर्ज करना है, और उसके साथ ये जो पुरुषार्थी स्वरूप है उसकी तुलना करनी है, उसके जैसा मुझे बनना है, ये हमारा लक्ष्य हो। वो कैसा है भाई हमारा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप? उसका आकार ऐसा ही है जैसा ये स्थूल शरीर का आकार है, आकार में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वो जो संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप है 3 बातों से वो संपन्न है, ईश्वरीय नशे से संपन्न है, ईश्वरीय गुणों से संपन्न है और ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न है। 3 बातों की संपन्नता उस फरिश्ता स्वरूप में सदा होती है। चेहरे पर ईश्वरीय नशा भरपूर है, दिव्य गुणों के आभूषण से चेहरा सजा हुआ है और बहुत सुंदर पवित्रता का ताज भी मुझ फरिश्ते ने धारण किया हुआ है, और मेरी बुद्धि रूपी तार डायरेक्ट परम धाम में परमात्मा से निरंतर जुटी रहती है, ऐसा हमें अनुभव करना है, ये मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप मेरी इंतजार कर रहा है, मुझे सेख्यान करना चाहता है, लेकिन शर्त है मेरे जैसा जब बनोगे तो मैं आपसे सेख्यान करूंगा, मेरा ही संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप मेरी इंतजार कर रहा है, उनके जैसा बनना है। जिस दिन से जिस बाबा के बच्चे का अलौकिक जन्म होता है उस दिन से उसका संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप वतन में बाबा के पास होता है। बाबा क्या करते हैं, ये पुरुषार्थी स्वरूप और वो संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप किस स्पीड से समीप आ रहे हैं वतन में बाबा वही देखते हैं। जब चाहे जिस बच्चे का देखना चाहते हैं फरिश्ता स्वरूप बाबा देख सकते हैं, समझा। तो इसलिए कर्म योगी फरिश्ता स्थिति अर्थात कर्म क्षेत्र पर हमें ऐसा अनुभव करना है कि भगवान ने मुझे फरिश्ते के रूप में इस संसार में भेजा हुआ है, जो भी मैं ड्यूटी करता हूं लौकिक अलौकिक, तो मैं कर्म योगी फरिश्ता हूं। 87 में हम मधुबन निवासी बाबा के साथ मिल रहे थे इसी हॉल में, बाबा ने कहा था मधुबन में तो आप सिंपल काम करते हो, भोजन पकाना है, सफाई करना है, कपड़े धोना है, ये सिंपल काम करते हैं, लेकिन आप जो भी काम करते हैं कोई खिड़की से कोई दरवाजे से आपको देखें तो वो ऐसा अनुभव करें ये कोई अल्लाह लोग है, ये कोई फरिश्ते हैं, साधारण रूप में आपको नहीं देखें। क्योंकि कर्म भले साधारण हो लेकिन स्थिति हमारी असाधारण हो। एक दिन क्या हुआ, ब्रह्मा बाबा ये हॉल है ना, इसके बाजू में एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी पर दिन दोपहर को 2 बजे निकर और पैंट पहनकर, निकर और बनियान पहनकर गोबर के गोले बना रहे थे, सब सुनसान था, अकेले बाबा यहां पहाड़ी पर गोबर के गोले बना रहे थे। एक व्यक्ति पांडव भवन के गेट पर खड़ा होकर अंदर आने लगा, कहते इस संस्था का मुखिया कौन है मैं जानना चाहता हूं, लेकिन कोई नजर ही नहीं आ रहा इधर तो, लेकिन वो देखो पहाड़ी पर एक कोई बूढ़ा व्यक्ति काम कर रहा है कुछ, चलो चलते हैं उनसे पूछते हैं। जैसे वो व्यक्ति यहां आया और बाबा के पास खड़ा होकर बाबा को देखने लगा तो बाबा का एकदम फरिश्ता स्वरूप उसको साक्षात्कार के रूप में अनुभव हो गया। जैसे साक्षात्कार फरिश्ता स्वरूप का हो गया वो बाबा के पैर पकड़ने लगा, ये व्यक्ति कितना सिंपल कार्य कर रहे हैं लेकिन ये तो कोई अलौकिक फरिश्ता है। तो कर्म करते समय जो हमारी स्थिति होती है, कोई अगर हमारे तरफ देखता है तो हमारी स्थिति का रिफ्लेक्शन उसके मानस पटल पर होता है और वो अनुभूति उसको होती है। इसलिए कर्म भले साधारण हो लेकिन हमारी स्थिति असाधारण हो, कर्म करते समय ऐसी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति हमें बढ़ाते जाना है। उसके लिए आपको 3 प्रयोग बार बार करते जाना है, एक्सपेरिमेंट। बाबा कहते हैं ना हमारा जीवन ही योगी और प्रयोगी बनना है, तो 3 प्रकार के प्रयोग हमें कर्म क्षेत्र पर बार बार करने हैं अगर आपको फरिश्ता स्थिति को निखारना है। तो पहला प्रयोग, मुझ आत्मा ने ये स्थूल शरीर धारण किया हुआ है और स्थूल जमीन पर चल रहा हूं, आपका अनुभव बिल्कुल साधारण होगा। ये तुलना के लिए एक तरफ रखो। फिर दूसरा प्रयोग ऐसा करो, अपना जो भान है उसको बहुत श्रेष्ठ बनाइए और ऐसा अनुभव कीजिए कि मुझ आत्मा ने ये दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस धारण की है और लाइट के शरीर पर मैं चल रहा हूं, कर्म कर रहा हूं, एकदम फरिश्ता ही फरिश्ता, अपने को भी अनुभव करेंगे, देखने वाला भी आपको फरिश्ता ही अनुभव करेगा। तीसरा प्रयोग है, मुझ आत्मा ने रुई का अर्थात कॉटन का शरीर धारण किया है और रुई के जमीन पर चल रहा हूं, बहुत हल्के फुल्के होकर आप चलेंगे। 18 जनवरी के दिन अगर आप मधुबन में आएंगे ना, तो ये मधुबन मधुबन नहीं रहता है, ऐसा लगता है फरिश्तों की दुनिया ही यहां आ चुकी है, उतर चुकी है, हर एक बाबा के प्यार में खोया हुआ रहता है, मौन व्रत धारण करता रहता है, बाबा की मस्ती में रहता है, हल्के फुल्के अनुभव करते हैं, ऐसा लगता है ये फरिश्तों की नगरी मधुबन बन चुका है। फरिश्ते ही फरिश्ते चारों तरफ चलते हुए दिखाई देते हैं। तो सारा मदार हमारा जो भान है वो श्रेष्ठ बनाने पर है। साधारण भान होगा तो साधारण स्थिति होगी, असाधारण या श्रेष्ठ भान अगर होगा तो श्रेष्ठ स्थिति होगी। किसकी हम सेवा करते हैं, चाहे लौकिक सेवा कर रहे हैं चाहे अलौकिक सेवा कर रहे हैं, हम किस लिए कर रहे हैं, बाबा के लिए कर रहे हैं। लौकिक सेवा भी तो कणा दाना बाबा के सेवा में लगाते हैं हम। तो जैसे कोई कंपनी की अमेरिका में, मान लीजिए टाटा कंपनी किसी को अमेरिका में भेजती है, तो वो अमेरिका में व्यक्ति काम करता है तो वो कंपनी कभी भूलता नहीं, इस कंपनी ने मुझे यहां भेजा है। तो ऐसे खुदा ने मुझे सेवा पर भेजा है, मैं खुदाई किस्मतगार हूं, ये आपके बुद्धि में होगा और इतना सुंदर आपका अनुभव होता जाएगा, खुदा की सेवा पर मैं उपस्थित खुदाई किस्मतगार हूं, कर्म योगी फरिश्ता हूं। जहां पर भी आप जाएंगे ना, आपको कोई साधारण रूप में देखेगा ही नहीं। ये कोई अलौकिक फरिश्ता है। समझा? लेकिन हमारा चेहरे पर वो ईश्वरीय नशा, ईश्वरीय खुमारी, ईश्वरीय मस्ती हमेशा चढ़ी हुई हो, ईश्वरीय नशा कितना चढ़ा है कैसा पता चलता है? हाँ, चेहरे में भी आंखों में पता चलता है। नशे की डिग्री कितनी ऊंची है वो आंखें बताती है। कई बार हम देखते हैं, कहते भगवान इस विद्यालय में पढ़ाई पढ़ाते हैं, कोई बड़ा व्यक्ति आता है सेंटर पर आता है, भाई यहां तो बहुत सिंपल लोग हैं, कोई हाई फाई व्यक्ति तो, कोई बड़ा व्यक्ति तो कुछ दिखाई नहीं देता है, ये गांव के लोग ऐसे ही सिंपल सिंपल मिडिल क्लास के लोग हैं, यहां तो दो तीन दिन के बाद में आना ही छोड़ देता है। बाबा के बच्चे मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास ही होंगे। क्यों भाई? जो सतयुग में राजे महाराजे होते हैं, रॉयल फैमिली में होते हैं, पहले जन्म में वो धीरे धीरे उतरते 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 लास्ट जन्म में मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास तक पहुंचते हैं, वो यहां बैठे हैं। तालियां बजाओ जरा। जो भी हाई आई कैची पर्सनैलिटी या हाई फाई पर्सनैलिटी, वो अभी अभी उतरे हैं, हम तो मक्खन खा के बैठे हैं, सारे क्लब में हीरो पार्ट बजा के बैठे हैं, उनों को तो थोड़ा चांस बचा हुआ वो मिल रहा है बेचारा, वो भी हमारे से देखा नहीं जाता है। क्या ये रूपवान है! अरे आपके सामने वो कुछ नहीं है, कितना भाग्य आपका ऊंचा है ना भाई। इसलिए भले स्ट्रेस हमारा साधारण हो, लेकिन स्थिति हमारी बहुत असाधारण हो, एक रूहानी नशा, एक अलौकिक मस्ती हमारे चेहरे पर छाई हुई हो, देखने वाला भी देखे ये कोई अलौकिक फरिश्ता है, कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, जो 84 जन्म हमने बजाए हैं, पहले जन्म पे अगर जाना है ना, ये सीढ़ियां 84 चढ़नी है ना, तो दो लिफ्ट है उसके लिए। समान में स्थित रहना वो लिफ्ट वहां पहुंचाएगी, या योग में स्थित रहना वो लिफ्ट वहां पहुंचाएगी, और तीसरी लिफ्ट नहीं है। पहुंचना है ना ऊपर, तो ये लिफ्ट में बैठना है। सदा सोमानधारी होकर रहना है और सदा बाप की याद में टिकना है, तो धीरे 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 आप एकदम अपने संपूर्ण स्थिति पर पहुंच जाएंगे, जहां से आपने अपना पाठ शुरू किया है। सदा सोमान के सिंहासन पर बैठे रहो। आज बाबा ने क्या बोला, योद्धा नहीं लेकिन दिल तक तो मशीन समझो। अब युद्ध करते रहेंगे क्या, सारा कलप युद्ध ही करते, अपना सारा संगम युद्ध ही करते रहेंगे क्या? एक भाई पूछ रहा था, भाई कितने जब से ज्ञान में आया हूं ना, माया से युद्ध ही करता ही रहता हूं, कब पता नहीं कब तक युद्ध करना होगा। जब तक आत्मा है अशुद्ध तब तक चलता रहेगा ये युद्ध। वो अशुद्धि की प्रॉपर्टी माया की दे दो ना वापस उसको, क्यों जेब में खर्ची बन रखी है कारोबार चलाने के लिए, जो भी माया के अंश वंश विकार हो के वापस कर दो, माया आपका पीछा छोड़ देगी। और सारे दिन भर में आपके चेहरे पर विजय का नशा छाया रहेगा, मैं विजयी रतन हूं, माया पर मैंने विजय प्राप्त किया, युधिष्ठिर बाबा ने मुझे युद्ध के मैदान में भेजा, दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सजा कर भेजा, और माया पर मैंने पूर्ण विजय प्राप्त किया, मैं विजयी आत्मा हूं। उसी फकुर में उसी मस्ती में सारा दिन में रहना। कहते जितनी बड़ी हस्ती उतनी बड़ी मस्ती। अब दुनिया में सबसे बड़ी हस्ती तो हमें मिली है भाई कि नहीं मिली है? अब बाबा से बढ़कर कोई है दुनिया में? सारा संसार उसके मुट्ठी में है, उसके इशारे के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। कहते ये झाड़ का पत्ता है ना, वो भी उसके इशारे बिना हिलता नहीं, ये हरा पत्ता नहीं, ये जो कल्प वृक्ष के आत्माओं रूपी हम पत्ती जो है, उनको चलाने वाला भी बाबा है, उनके इशारे बिना एक कदम भी नहीं हम उठा सकते, इतनी बड़ी वो शक्ति है। वो मेरा बाप बन चुका है तो वो मस्ती भी तो चढ़नी चाहिए ना भाई, कहने मात्र तो नहीं है ना, केवल प्रैक्टिकल बना हुआ है बाबा। इसलिए स्वयं ही स्वयं को मान देना अर्थात स्वमान में स्थित रहना। कोई मान दे न दे मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, मुझे अपने को मान देना सीखना है। हम सेंटर पर जाते हैं, मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, हमारा चेहरा खिल जाता है, जैसे सेंटर से बाहर चले जाते हैं ना, चेहरा एकदम बोलते ही नहीं, भगवान की पालना मिल रही है क्यों भाई, चार दीवारों में तो उछल रहा है। बहुत मुझसे मुरली अच्छी इतिहास की मजा आ गया, जैसे बाहर गए ना नशा सोडा वाटर हो जाता है, चेहरा बोलते ही नहीं, भगवान हमें पढ़ा रहा है। क्यों ऐसा होता है बताओ? इतने सालों से ये बगीचे को वो माली जो एक है वो ज्ञान और योग के जल से सींच रहा है, कहता है ये मेरे बगीचे का जो रेहे गुलाब है, अरे गुलाब कैसा हो, खिला हुआ, लेकिन खिला हुआ दिखाई नहीं देता है। क्यों भाई? एक स्लोगन लिखो, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, चेहरा कितना भी सुंदर हो ना मुस्कुराहट नहीं, वो कोई देखना भी नहीं चाहता है। मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं और सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। सत्य ज्ञान मिल गया, सच्चा सुख मिला, तो हमारे चेहरे पर हमेशा रूहानी मुस्कुराहट छाई हुई हो। मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। क्यों हमें वो नशा नहीं चढ़ता है? क्योंकि 2500 साल तक हम माया की जेल में रहे हैं गुलाम बनकर, उसके कारण आत्मा में जो हीन भावना का जो संस्कार है ना, कूट कूट के भरा पड़ा है, वो हमें उभरने ही नहीं देता है। इसलिए हमें द्वापर कलयुग को नहीं देखना है, सतयुग त्रेता युग के पाठ को देखना है, कितना रॉयल पाठ हमारा इस ड्रामा में है। तो आपका खोया हुआ जो सोमान है पुनः आप अनुभव करेंगे, और चेहरे पर वो खुशहाली, चेहरे पर वो रूहानी नशा ऑटोमेटिक छाया रहेगा, क्योंकि मन खुश है तो चेहरा खुश होता है। कहते फेस इज अ मिरर ऑफ आवर माइंड, चेहरा एक आईना है, मन में जो होता है वो चेहरे पर आईने में दिखाई देता है, हम छिपा नहीं सकते। और हमारी खुशी को चुराने के लिए 3 चोर बार बार हमारा दरवाजा खटखटाते हैं, चिंता, भय और बोझ, ये 3 चोर बार बार दरवाजा खटखटाते हैं, किसी को फटकने नहीं देना है। चिंता, भय और बोझ, चिंतामणि बाप मिल गया, चिंता किस बात की? सर्वशक्तिमान बाप मेरे साथ है तो भय की चीज का? और सारे संसार का बोझ ढोने वाला मेरा बाप बन चुका है तो बोझ किस बात का? तीनों बातें खत्म हो गई, मन खुश है, चेहरा प्रसन्न है। बाबा कहते हैं आपका कार्य है खुशियां बांटना। कैसे बांटेंगे भाई? पैसा देना है तो जेब से निकालोगे, दोगे किसी को, गरीब को? अब खुशी कैसे बांटेंगे? खुशनुमा चेहरे से खुशियां बांटते रहे, ये हमारी जिम्मेदारी बाबा ने दी है, क्योंकि हम हीरो एक्टर है, ऑर्डिनरी एक्टर नहीं है, विश्व के स्टेज पर है। जब से ब्रह्मा कुमार बने हैं ना, हजारों आंखें आपको सदा देखती रहती, पहले कोई देखता भी नहीं था। जब से बाबा के पास आए ना, क्या बढ़ती है, कहां खाती है, क्या जाती है, क्या पहनती है, क्या करती है, सब देखते हैं। पहले पड़ोसी अड़ोसी भी कोई नहीं देखता था, क्योंकि आप हीरो बन गए अभी। सुना? तो इसलिए मैं हीरो एक्टर हूं, मेरे चेहरे पर हमेशा खुशी छाई हुई रहे, खुशनुमा चेहरा हो हमेशा। लेकिन वो तब रहेगा जब सोमान के सिंहासन पर बैठे रहेंगे। ब्रह्मा बाबा को शुरू दिन से नारायणी नशा रहता था, मैं नारायण बनने वाला हूं, शुरू दिन से अंत तक वो नशे ने निशाने तक, संपूर्णता के निशाने पर तेजी से पहुंचे। नशा ये काम करता है, तेजी से आगे बढ़ाता है। नशा नहीं था तो धीरे धीरे गाड़ी चलेगी, क्योंकि नशा आत्मा की जान है, नशा आत्मा की शान है। नशा उल्टा क्या है? शान। आत्मा की जान है, आत्मा की शान है, ईश्वरीय नशा। ठीक है ना? इसलिए सदा ईश्वरीय नशे में हमें मस्त रहना है। कर्म योगी फरिश्ता स्थिति को अनुभूति करने के लिए हमेशा समझे खुदा ने मुझे फरिश्ता स्वरूप में सेवा पर भेजा है। जहां पर भी मैं जाता हूं जाती हूं, फरिश्ता अर्थात मेल फीमेल के भान से परे, उसमें मेल फीमेल का कोई कॉन्शियस नहीं रहता है, लाइट के शरीरधारी हम उड़ते हुए फरिश्ते हैं, समझा? तो अभी हम बहुत सुंदर अनुभूति करना चाहते हैं योग की, परिस्थितिक भी कराएंगे, योग की भी अनुभूति कराना चाहेंगे। बोलो करेंगे भाई, कौन करना चाहते हैं? बहुत अच्छा, क्योंकि स्थित अनुभूति के बिना ये ब्राह्मण जीवन खोखला जीवन अनुभव होता है, कितने भी साल ज्ञान में चलो, लेकिन अलौकिक अनुभूति या आपके पास नहीं होगी तो खालीपन या खोखलेपन की अनुभूति होगी। इसलिए मुझ आत्मा के पास अलौकिक अनुभव तो अनुभव का धन बढ़ता रहे, यही बात बुद्धि में सदा रखना है। उठना है किसी को? जाना है 5 मिनट, ठीक है 5 मिनट आ जाओ, फिर हम ऐसा पावरफुल योगाभ्यास करेंगे जो आप मस्ती में खो जाएंगे, ठीक है। जल्दी आइए, जल्दी जाइए। जल्दी आना, बात नहीं करना अभी। ये लोगों से बात करने के लिए तो फोन चाहिए है ना, लेकिन परमात्मा के साथ बात करने के लिए मौन चाहिए। फोन से बात करेंगे तो बिल देना पड़ता है, मौन से बात करेंगे तो दिल देना पड़ता है। माया के साथ जो प्यार करता है वो बिखर जाता है, परमात्मा के साथ जो प्यार करता है वो निखर जाता है। सही बात है ना। थोड़ा सा अभी आ गए सभी हैं जी, सब आ गए, चलो करें तो थोड़ा सा ये कर लीजिए जरा ऐसे। सभी थोड़ा अलर्ट होके बैठेंगे, एकदम चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे, पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी हो, ऐसे बुढ़े की तरह नहीं हो, सीधी हो, एकदम 7:30 बजे तक आप अपनी अलौकिक दुनिया में अनुभव करेंगे, ठीक है ना भाई। शांति, इस देह रूपी मकान में मैं ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक आंखों रूपी खिड़कियों के पास भ्रुकुटी के बीच विराजमान हूँ, वही आत्मा अति सूक्ष्म चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं, शांत स्वरूप दिव्य सितारा हूं, शांति का प्रकाश शांति के प्रकंपन चारों ओर फैल रही है, परम शांति की अनुभूति। ज्योति बिंदु आत्मा हूं, पवित्रता का सुंदर ताज, मुझ आत्मा ने किया है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। सचमुच कितनी न खुशनसीब आत्मा हो, जो स्वयं के सत्य स्वरूप को बिंदु स्वरूप को निराकारी स्वरूप को दिव्य स्वरूप को दिव्य नेत्र से स्पष्ट देख रही हूं। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान, आत्मा हूं। भाग्य विधाता भगवान हर रोज मेरे भाग्य के गीत मुरली में गाते ही रहते हैं। मेरे भाग्य का सितारा बुलंदियों पर है। जैसे आसमान में जड़ सितारे चमकते हैं, वैसे इस धरती पर मैं चैतन्य सितारा विराजमान हूं। दिव्यता की रोशनी फैला रहा हूं। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है। अष्ट शक्तियों की चमक मुझ मस्तक मणि आत्मा से चारों फैल रही है। इस संसार में मेरा असली स्वरूप केवल एक चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में ही है। मैं चमकता हुआ चौथे बिंदु सितारा इस देह रूपी मकान से न्यारा होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर ब्रह्मांड की दुनिया की ओर उड़ता हुआ जा रहा हूं। इस विश्व के ग्लोब से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रहा हूं जा रहा हूं। सितारा फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गया जहां चारों सफेद सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश पवित्रता ही पवित्रता है। मुझ ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस स्वरूप की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर हल्की फुल्की ड्रेस यहां मेरी हरेक कर्मेंद्रिय से दिव्य प्रकाश की किरणें चारों फैल रही है। फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने दिव्य और भव्य संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति मीठे सेव बाबुल भी उनके बुकटे में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे। स्नेह सागर से स्नेह की ले रही ब्रह्मा बाबा के नेत्र मार्ग से मुझ फरिश्ते की हो आ रही है। स्नेह सागर की लहरों में बाबा की बाहों के झूले में मैं फरिश्ता झूल रहा हूं। बाबा की बाहों में समा गया हूं। सिकिलते बच्चे मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना खोया हुआ लाड 5,000 वर्षों बाद पाया है, इसलिए मैं बेहद खुश हूं। बाबा के नैनों में स्नेह के मोती चमक रहे। प्यारे बच्चे इस फरिश्तों के दुनिया में सदा आपका स्वागत है। जब जाओ जिस संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो करते रहो। लाडले बच्चे कभी मुझे पिता के रूप में अनुभव करो। छोटा बच्चा या बच्ची बनकर मेरे गोदी में बैठो, मेरे गोदी में खेलो। आज्ञाकारी वफादार फरमानदार बच्चा या बच्ची बनकर पिता का निस्वार्थ प्यार मुझसे अनुभव करो। लाडले बच्चे कभी मुझे परम शिक्षक के रूप में अनुभव करो। सचमुच मैं कितनी न भाग्यशाली आत्मा हूं जुड़ाएर एक भगवान साकार रूप में टीचर बनकर मुझे हर रोज पढ़ाई पढ़ाते, बड़ी सरलता से ज्ञान के गुहराज मुरली में समझाते हैं। अमूल्य ज्ञान रत्नों से मेरी बुद्धि रूपी झोली भरपूर करते हैं, जिससे मेरी बुद्धि दिव्य और दुरंदेशी बनती जा रही है। मुझे अपने टीचर पर नाज है, टीचर के दिल की दुआएं मुझे हर रोज प्राप्त होती है। मीठे हैं बच्चे, कभी मुझे सतगुरु के रूप में अनुभव करो। मेरे वरदानी दृष्टि से अनेक वरदान प्राप्त करो। मेरा वरदास्त सदा अपने माथे पर अनुभव करो। सारे दिन भर मेरी छत्र छाया में चलते रहो, पलते रहो और वरदानी मूरत बनते चलो। सिक्के बच्चे, कभी मुझे खुदा दोस्त के रूप में अनुभव करो। मेरे साथ बैठो, मेरे साथ बातें करो, मेरे साथ अपने दिल के समाचार की लेन देन करके स्वयं को सदा हल्के अनुभव करो। मेरे साथ चलो, मेरे साथ खेलो, सचमुच मैं कितनी न नसीबवान आत्मा हूं जो डायरेक्ट भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करते हुए स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर अनुभव कर रही हूं। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं निराकार बिंदु आत्मा निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। जा रहे हूं, निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूं। कितनी न्यारी प्यारी निराकारी दुनिया है यह, चारों ओर सुनहरी लाल ये लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है, शांति शांति है। स्वीट साइलेंस, होम है यह प्यारा। कितना सुंदर है यह मेरा मूल वतन, प्यारा परम धाम, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण दाता, मेरे प्राण पिता, मेरे प्राण आधार, मेरे प्राणेश्वर सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव पिता, मेरे समक्ष विराजमान है, मैं आत्मा बाबा के सुंदर छवि को निहार रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं, मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम, बाबा ही बाबा है, बस बाबा ही बाबा है। बाबा मेरे संसार है, बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के महासागर है, हजारों सूर्यों से शक्तिशाली है। ज्ञान सूर्य शिव पिता से बेहद शक्तिशाली किरणें निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर पड़ रही है। शक्तिशाली किरणों की वर्षा, निरंतर मुझ आत्मा पर हो रही है। मैं आत्मा प्रचंड शक्तियां अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप दागता हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। ज्ञान सूर्य की तपत में तप रही हूं। तपती ही जा रही हूं। ज्ञान सूर्य स्नान कर रही हूं। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है। शक्तियों से भरपूर हो रही है। सचमुच मेरे जीवन के सुनहरे पल है यहां। जब मैं आत्मा बिंदु डायरेक्ट परमात्मा के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। बाबा मेरे बेस्ट कंपेनियन है। उनकी सुखद कंपनी में परम सुख की अनुभूति हो रही है। दिल कहता है इसी गहन अनुभूति में मैं आत्मा खोई रहूं, समाई रहूं। शांति के सागर शिवपिता से शांति की किरणों की वर्षा मुझ आत्मा पर हो रही है। मेरे द्वारा विश्व के ग्लोब पर अनेक आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर शांति की किरणों की वर्षा हो रही है, होती जा रही है। अनेक आत्माएं शांति की शीतलता की अनुभूति कर रही है। कितना सुंदर अनुभव है यहां, विश्व कल्याणकारी स्थिति का अनुभव। मैं फरिश्ता विश्व भ्रमण कर रहा हूं, एक तरफ मेरी बुद्धि की तार परमात्मा ज्ञान सूर्य से जुटी हुई है, शक्तियों के किरणों की सकाश मैं फरिश्ता अनुभव कर रहा हूं। मेरे द्वारा शक्तियों के किरणों की सकाश समस्त विश्व के ग्लोब पर अनेक आत्माओं रूपी बिंदुओं पर पड़ रहे हैं। इस नुमा शाम के समय मैं फरिश्ता भगवान से शक्तियों के सकाश लेकर समस्त विश्व की आत्माओं को दे रहा हूं। अनेक आत्माएं सुकून अनुभव कर रही है, रिटर्न में मुझे दिल की दुआएं भी दे रही है। इतने विशाल परम धाम में ज्ञान सूर्य शिव पिता और मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा आमने सामने बैठे हुए हैं, शक्तियों को ग्रहण मैं आत्मा कर रही हूं। ज्ञान सूर्य स्नान का भरपूर आनंद ले रही हूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं, और इस साकारी शरीर में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर स्वमान के सिंहासन पर विराजमान होकर स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुमति कर रहा हूं। मैं आत्मा राजा सोमान के सिंहासन पर बैठकर मास्टर सर्वशक्तिवान सोमान के सिंहासन पर बैठकर अपने स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर शासन करके स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रहा हूं। मौसम मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे इस वायुमंडल में चारों ओर फैल रही है। वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योतिबिंदु है, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति ही बिंदु हूं, निराकार ज्योति बिंदु हूं। सात गुणों वाला सप्त ऋषि आत्मा इस देह रूपी गुफा में बैठकर तपस्या में लीन है। डायरेक्ट परम नाम से ज्ञान सूर्य शिपिता से शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मेरे द्वारा चारों फैल रहे हैं। मैं आत्मा बेदाग चैतन्य हीरा हूं। अष्ट शक्तियों की चमक मुझ आत्मा रूपी चैतन्य हीरे से चारों फैल रही है। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत अच्छी अनुभूति है ना? मन नहीं करता ना वाणी में आने का? तो बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी का, बहुत ही सुंदर परमात्मा की याद में मगन कर दिया। और न सिर्फ मगन किया, उस याद में रहते हुए स्वयं भी भरपूर हुए और पूरे विश्व की भी सेवा की है ना? तो भ्राता जी को पुनः पुनः धन्यवाद।